ओम शांति। आप सभी परमात्म प्यार में पलने वाले बाप की श्रीमत पर चलने वाले अपने जीवन को श्रीमत के आधार से श्रेष्ठ बनाने वाले आप सभी विशेष आत्माएं हो। ये आप हम सब आत्माओं का परम सौभाग्य है कि हम सबको हर कदम पर श्रीमत मिलती है। बच्चे इस तरह से चलो, उठो, बैठो, ऐसे सेवा करो, एक एक पल के लिए, एक एक कर्म के लिए भगवान श्रीमत दे रहा है। और सिर्फ श्रीमत नहीं देता, लेकिन श्रीमत को पालन करने के लिए शक्ति भी देता है, युक्ति भी बताता है कि बच्चे इस विधि से पालन करो, और साथ में ये भी बताता है कि बच्चे अगर श्रीमत पर चलते रहे तो आपको क्या क्या फायदा है। हम सब बच्चे जानते हैं कि भगवान की मत पर चलने से क्या फायदा है। ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं है जो इस बात को ना जानता हो कि श्री मत पर चलने से क्या फायदा है। फिर भी नहीं चलते हैं तो इसका यही कारण है कि जानते हुए भी वो स्मृति इमर्ज रूप में नहीं रहती है। जानते हुए भी लेकिन स्मृति इमर्ज रूप में न होने के कारण हम श्री मत पर चलते नहीं। अगर इमर्ज रूप में स्मृति रहे तो पुरुषार्थ अवश्य होगा। क्यों? इमर्ज रूप में स्मृति होने से, श्री मत पर चलने से प्राप्ति अवश्य होगी, और प्राप्ति पुरुषार्थ को स्वतः कराती है। प्राप्ति पुरुषार्थ के लिए रुकावट नहीं बनती, लेकिन प्राप्ति पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए तीव्रता ले आती है। उदाहरण के रूप में मान लो आप लोगों में से ही कोई ऐसा हो जो बिजनेसमैन हो, कोई भी काम करता हो और दुकान बंद कर रहा हो, सारा दिन उसने मेहनत किया है, थक गया हो, दुकान बंद करके वापस जाने वाला हो, इतने में कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो ढेर सारा सामान खरीदने वाला हो तो आपकी थकावट उतर जाएगी या नहीं? ऑटोमेटिक। क्यों? प्राप्ति। तो प्राप्ति स्वतः ही पुरुषार्थ कराती है। स्मृति इमर्ज रूप में ना होने के कारण प्राप्ति स्मृति में नहीं रहती है, और स्मृति में न रहने के कारण हम श्रीमत पर चलते नहीं। जानते हैं लेकिन चलते नहीं, स्मृति इमर्ज रूप में नहीं। अब क्या पुरुषार्थ करें जो स्मृति इमर्ज रूप में रहे? आप देखो, लौकिक में जब बच्चे को कोई पाठ पक्का कराते हो पढ़ाई में, जल्दी वो पढ़ता नहीं है लेकिन आप पक्का कराते हो तो क्या विधि अपनाते हो? कुछ न कुछ उसको लालच देते हो, हम टॉफी दे देंगे, ये चीज दे देंगे, वो चीज दे देंगे, उसको उसकी पुरुषार्थ के लिए आगे कोई न कोई चीज प्राप्ति का देते। तो आप जिस चीज की स्मृति रखना चाहते हो उस स्मृति के लिए अपने मन को ही दो कि हे मन, अगर ये स्मृति में रखोगे तो भगवान के द्वारा आपको ये वरदान प्राप्त होगा, ये आशीर्वाद प्राप्त होगा। मन को ये लालच दे दो, मन को ये प्राप्ति सामने दिखा दो, मन को प्रैक्टिकल में भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा, वो उसको मन को अनुभव करा दो। फिर देखो मन उस तरफ बार बार जाता या नहीं, प्रयोग करके देखो। हम करते क्या हैं? मन को कोई काम देते नहीं हैं। मन को काम न देने के कारण जो द्वापर से अभी तक देह अभिमान होने के कारण मन फ्री घूमता था, क्योंकि तब से मान लिया कि मन तो घोड़े के समान चंचल है, वायु के समान तेज है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये जो मान्यता चली आई, इस कारण से हम सब ने मन को बस में करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। एक तो विधि भी नहीं मालूम थी, दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं किया, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कह दिया मन को बस में करना असंभव है। वायु के समान तेज बता दिया, बाबा तो कहता वायु क्या इतना तेज है, वायु से भी हजार गुना तेज है। एक सेकंड में, सेकंड से भी कम, लंदन अमेरिका जहां कभी कहीं गए हो वहां पहुंचने में कितना देर लगता है मन से? इतनी फास्ट गति मन की है। और घोड़े के समान चंचल क्यों कहा? चंचल तो बंदर भी होता है, लेकिन बाबा ने मन की चंचलता घोड़े से दी है, शास्त्र वालों ने भी घोड़े से दी है कि मन घोड़े के समान चंचल है। क्यों? सबसे ज्यादा तो उछल कूद मचाने वाला बंदर होता है। क्या कारण है पांडव, क्यों घोड़े से चंचलता का मिसाल दिया है मन का? क्योंकि आप लोगों ने कोई भी आज तक कभी घोड़े को बैठे हुए देखा है? कभी एक सेकंड भी शांति से घोड़ा बैठता नहीं, वो खड़े खड़े सोता है, और जब सोता है खड़े खड़े तब भी देखो पैर उठाता रहता है, ध्यान देकर देख। इसलिए मन की चंचलता घोड़े से की गई है। कोई भी जानवर होगा थोड़ी देर सोएगा तो सो जाएगा, लेकिन घोड़ा सोता है तो भी पैर उठाता रहता है, पैर उठता रहता है उसका, एक एक पैर। तो जो मन घोड़े के समान चंचल है, ये जो सुन रखा है, इसलिए मन को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन अभी बाबा ने बता दिया कि श्रीमत की लगाम से मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। जैसा बाबा मन को कंट्रोल करने की विधि बताता है, श्रीमत देता है, उस प्रकार से मन को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे मन को कंट्रोल करने की 5 विधि है, आप कर सहज है। पहली बात है, जब देखो मन भाग रहा है तो पहला संकल्प करो कि मन प्रभु की अमानत है, मेरा मन नहीं है, अमानत में खयानत नहीं करना है। मन प्रभु की अमानत है, मन में खयानत नहीं करना है। अर्थात जब देखो फास्ट संकल्प चल रहे हैं, श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं, मन जहां लगाना चाहते हो नहीं लग रहा है, तो अपने संकल्प को, यह संकल्प दो, संकल्प को ही संकल्प दो कि ये मन तो प्रभु की अमानत है, इसको प्रभु के श्रीमत प्रमाण ही चलना है। ऐसे संकल्प करके थोड़ा सा संकल्पों पर अटेंशन दे दो, नहीं ये तो श्रीमत प्रमाण ही चलेगा, ये तो प्रभु की अमानत है, तो संकल्प की लाइन चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, मन को मारो नहीं, लेकिन मन को सुधारो, या मन को ना अमन करो ना दमन करो, मन को सुमन करो। कई क्या करते हैं, योग लगाने बैठते हैं, मन इधर उधर भागता है तो जबरदस्ती मन को दबाने की कोशिश करते, नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, मैं तो बिंदु, मतलब जबरदस्ती ब्रेन पर बहुत जोर देते उसको दबाने के लिए। लेकिन बाबा ने सहज विधि बताई है, ना मन अमन होगा अर्थात संकल्प ही न चले, ये कोई स्थिति होती ही नहीं है। ना अमन करो ना दमन करो, जब देखो मन में बहुत फास्ट व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो मन को ना अमन करो ना दमन करो, सुमन करो अर्थात उसको अच्छे विचार दे दो। अच्छे विचार अर्थात मुरली की पॉइंट दे दो, कोई अच्छी अच्छी बातें याद करो। आपके साथ कभी बाबा की याद का अनुभव हुआ हो वो स्मृति ले आओ, कभी आपने किसी को विशेष सुख दिया हो वो स्मृति ले आओ, किसी को आपने याद की कोई अच्छी विधि बताई हो वो स्मृति में ले आओ, किसी को बाबा का परिचय दिया हो वो स्मृति में ले आओ। कोई न कोई पॉइंट सुमन अच्छे विचारों में ले आओ, तो जब अच्छे विचारों में ले आएंगे तो जो मन का बहुत फोर्स था व्यर्थ की तरफ वो हट जाएगा, फिर अच्छे विचारों से फिर आगे अशरीरी हो जाएंगे। तो दूसरा है, ना मन को अमन करो ना दमन करो, लेकिन मन को सुमन करो। तीसरा है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन बुद्धि संस्कार सहित है, तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, तो बुद्धि को दिव्य बनाओ, बुद्धि को दिव्य बनाओ। किस विधि से बुद्धि को दिव्य बनाएंगे? दिव्य बनाने की विधि है बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित करना। देखो बाबा मुरली में कहता है, मन को तो दिव्य बनाने के लिए कहता है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए ये कभी नहीं कहा है बुद्धि मना भव, मन मना भव बोला है, मन मेरे में लगाओ। लेकिन बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बुद्धि मना भाव नहीं बोला है, लेकिन बोला है बुद्धि को मेरे आगे समर्पित कर दो, बुद्धि को मेरे आगे समर्पित कर दो। तो विधि बताई थी कि किस विधि से समर्पित करो, अपनी बुद्धि को बाप के आगे किस विधि से समर्पित करो। तो बाबा ने विधि बताई थी, इसी श्रेष्ठ संकल्प के आधार से कि बाबा इस मैपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि, आज से बाबा मैं आत्मा आपके आगे अर्पण करती हूँ। ते अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि, ये मैं आत्मा आज से आपके आगे अर्पण करती हूँ। तो जब ये संकल्प आप बाबा के आगे रखोगे, आप बाबा को संकल्पों से देंगे कि बाबा इस मैंपन की बुद्धि, ते अभिमान की बुद्धि आपको अर्पित करता हूँ या करते हूँ, तो बाबा तुरंत उधर से रिस्पांस देगा, अच्छा बच्चे, पाप ने स्वीकार किया, अब इस बुद्धि पर आपका अधिकार नहीं है, अब बाप जैसे चलाए, अर्थात इस बुद्धि के द्वारा बाप के श्रीमत प्रमाण ही निर्णय देना। तो जब श्रीमत प्रमाण निर्णय देंगे और वो प्रैक्टिस प्रैक्टिकल कर्म में लाते जाएंगे तो कर्म श्रेष्ठ होते होते श्रेष्ठ संकल्प चलते चलते बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। तो हमने अपनी बुद्धि को बाप के आगे अर्पित किया है या नहीं, उसकी कैसे हम जांच करें, कैसे पता पड़े कि हमने किया है या नहीं किया है या कितना किया है। जिसने अपनी बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दिया है उसकी बुद्धि दिव्य बन जाएगी, और दिव्य बुद्धि की निशानी है कि दिव्य बुद्धि में अवगुण नहीं दिखाई पड़ता। भले अवगुण वाला कर्म हो रहा है लेकिन दिव्य बुद्धि वाला उस अवगुण में भी गुण देख लेगा। अब उदाहरण देता हूं, आपकी बुद्धि दिव्य है या नहीं, मान लो आप अपने सेंटर पर हैं या मधुबन में आए हैं या अभी आप क्लास सुन रहे हैं, मान लो जो बात मैं आपको बता रहा हूं बोल रहा हूं और क्लास पूरा होता है, हम सब चलते हैं और जिस तरह से हम बोला है उस तरह से आप हमारे में देख नहीं रहे, वो एक्टिविटी नहीं देख पा रहे, तो आपको क्या संकल्प चलेगा, क्या संकल्प चलेगा? यही ना कि कहते तो कुछ और हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आएगा ना यही संकल्प। अब ये किसको दिखाई पड़ा, जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं है। अगर दिव्य होती तो क्या देखते, अगर बुद्धि दिव्य होती बाप को समर्पित किया हुआ है तो आपकी बुद्धि में आता कि नहीं बाबा ने कहा है सी फादर एंड मदर डोंट ब्रदर एंड सिस्टर, बाप को देखो किसी भाई बहन को नहीं देखो, अगर भाई बहन को देखना है तो सिर्फ उनके गुण देखो। अगर समर्पित होती तो बुद्धि ये तुरंत निर्णय देती, अगर समर्पित नहीं है तो अवगुण देखकर अवगुण वाला ही निर्णय देगी। क्योंकि जो दिव्य है उसको अवगुण दिखाई ही नहीं पड़ता है, अवगुण में गुण ही दिखाई पड़ता है। जैसे बाबा सदा दिव्य है, एक उदाहरण बाबा का बताता हूं, सदा दिव्य है बाबा। इसी डायमंड हॉल में करीब मैं समझता हूं 8-10 साल पहले की बात होगी, आप लोग भी अभी क्लास में आए हैं, आपको भी डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप लोग ताली नहीं बजाओ, डायरेक्शन दिया जाएगा जब बाबा कहे तो ताली बजाना, वरना बाबा की मुरली चलते चलते कोई अच्छी पॉइंट उमंग वाली आती है तो दोनों हाथ की ताली नहीं बजाना, ये डायरेक्शन दिया जाता है। उस समय भी डायरेक्शन दिया गया था। बाबा मुरली चला रहा था, मुरली चलते चलते कोई इतनी अच्छी पॉइंट आई कि जोर से ताली बजा दी। तो एक बार ताली बज के बंद हो गई, बाबा फिर मुरली चलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जोर से ताली बजी। जब ताली बजी तो बाबा खुद कह रहा है, कोई और भाई बहने नहीं, बाबा खुद कह रहा है, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। बाबा ने बताया, बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे करके दिखाया, बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ, दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। इसके बाद बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। जब फिर ताली बजी तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज होता है, घमसान हो जाता है, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है बच्चे, आवाज नहीं। और बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर जोर से ताली बजी। उसके बाद भी ताली बजी तो जो वॉलंटियर थे सब खड़े हो गए, सबने इशारा किया, ताली तो बंद हो गई। अब बताओ, अगर भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है, उसके बावजूद अगर हम नहीं मान रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्या जजमेंट देगी? यही ना कि देखो, बाबा कह रहा उसके बाद भी नहीं मान रहे, यही देगी ना? बोलो शक्तियां, क्या जजमेंट देगी आपकी बुद्धि, क्या निर्णय देगी? पांडव, आपको उस समय क्या संकल्प आता जब बाबा मना कर रहा है उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या संकल्प आता? मैं भी बैठा हुआ था, मुझे भी संकल्प आया कि जब सचमुच स्वयं भगवान मना कर रहा है, हम ताली बजाते हैं भगवान को खुश करने के लिए कि बाबा जो आपने कहा मुझे मंजूर है, बहुत अच्छा हम करेंगे, और भगवान स्वयं कह रहा है कि मैं ताली से प्रसन्न नहीं हूं, फिर क्यों ताली बजाए जा रहे हैं? मेरे मन में भी संकल्प उठ गया कि बाबा मना कर रहा उसके बाद भी नहीं मानने, तो हमारे सबके मन में तो इस तरह से संकल्प चला, और भगवान के मन में क्या संकल्प चला? बाबा कहता है कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, और बच्चों को बाबा कहता है बच्चे ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, जबरदस्ती ताली बजाए जा रहे। अब देखो बाबा कितना पॉजिटिव लिया उस बात को, देखो कितना पॉजिटिव लिया, कितनी बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बाबा को कमी नहीं दिखाई पड़ी, कितना पॉजिटिव ले लिया। क्यों? दिव्य है, दिव्य में अवगुण नहीं दिखाई पड़ता है। तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ, जब बुद्धि दिव्य होगी तो मन को कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय देना। तो जो संकल्प उठता है अगर हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है तो मन की सहयोगी बन जाती है, हाँ हाँ ठीक है ऐसे करना चाहिए, और मन उस पे चल पड़ता है कर लेता है। अगर बुद्धि दिव्य होगी तो मन को रोकेगी नहीं, श्रीमत ऐसा कहती है, बाबा ऐसा कहता है, ब्राह्मण जीवन की ऐसी मर्यादा है, कहकर मन को रोक देगी। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाओ तो दिव्य बुद्धि मन को दिव्यता की रास्ते पर ले आएगी। इसके बाद मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन बुद्धि संस्कार सहित मैं आत्मा हूं, अर्थात मैं आत्मा मन बुद्धि का मालिक हूं। तो वहां मालिकपन की अथॉरिटी चलाओ, मैं आत्मा मन का मालिक हूं, मन मेरे आज्ञा के बिना चल नहीं सकता, मैं आत्मा मालिक हूं, मालिकपन की सीट पर स्वयं को ले आओ। तो जितना मालिकपन की सीट पर ले आएंगे, अपने को मालिक की स्थिति पर रखेंगे, मन आपके कंट्रोल में रहेगा। और पांचवी बात है, मन को कंट्रोल करने का सहज साधन है मन मना भाव। बार बार मन घुमा घुमा कर बात में लगाते रहो, और इसके लिए मन बार बार आए लगे, इसके लिए आपको बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी पड़ेगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति, जहां भी मन जाए तुरंत वैराग्य वृत्ति से वापस करो, वैराग्य वृत्ति से वापस करो, बाबा में लगाओ। बार बार वैराग्य वृत्ति को इमर्श करना पड़ेगा, लेकिन कई वैराग्य वृत्ति को ऐसा समझते हैं कि कोई चीज छोड़ देना नहीं। जब तक ये शरीर है, आत्मा इस शरीर में है, तब तक हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। चलो कल शरीर छूटे, आज तो खाने के लिए चाहिए, आज तो पहनने के लिए चाहिए, आज तो रहने के लिए चारपाई चाहिए, क्या चीज हम छोड़ क्या सकते हैं? कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ये जो मन में बिठाया है वैराग्य वृत्ति माना छोड़ना नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि छोड़ सकते है ही नहीं। समाज में है समाज नहीं छोड़ सकते हैं, परिवार में है परिवार नहीं छोड़ सकते हैं, इस शरीर को जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते। दाल रोटी चावल दवाई जो कुछ भी देना है देना ही पड़ेगा, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अर्थ क्या है? वैराग्य वृत्ति का एक छोटा सा उदाहरण बाबा ने बताया था, दुनियावी शास्त्र रामायण में दिखाया है वैराग्य वृत्ति का, कि वैराग्य वृत्ति किसे कहा जाता है। दिखाते हैं रामायण में कि जब राम रावण को मार के अयोध्या आया, सिंहासन पर बैठा, तो राम ने सबको गिफ्ट दिया, तो ये सबने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन हनुमान जी को नहीं दिया। जब हनुमान को गिफ्ट नहीं मिली तो सीता जी ने अपने गले का जो बहुमूल्य उस समय के हिसाब से कहते 9 लखा हार था, अति कीमती हीरे मोतियों वाला, वो उतार के हनुमान जी को दे दिया गिफ्ट में। तो हनुमान जी ने क्या किया, हार के जितने मोती थे, दाने थे, एक एक मोती को दांत से तोड़ता था और तोड़ के ऐसे देख के फेंक देता था, तोड़ता था देखकर फेंक देता था। तो सबने पूछा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? किसी ने कहा, बंदर क्या जाने हीरा मोती क्या होता है, किसी ने कुछ कहा। तो हनुमान जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता हीरा मोती क्या होता, मैं तो ये देख रहा हूं इसमें राम जी की फोटो कहां है। तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं, सीधी सी बात है। बस वैराग्य वृत्ति की सुंदर विधि है, खूब अच्छा कपड़ा पहनो, मना नहीं है, पैसा है तो क्यों नहीं पहनो, लेकिन पहन के देखो कि क्या पहनने के बाद मुझे बाबा याद आया या देवभान याद आया। अगर पहनने के बाद बाबा याद आया तो वो कमरा कपड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरातों से भी अमूल्य है। अगर वो पहनने के बाद बाबा याद नहीं आया, वो पहनने के बाद सेवा नहीं हुई, तो वो कपड़ा आपका 2 पैसे का भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आपके पास पैसे है, गाड़ी खरीदो, मकान बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन देखो क्या बाबा याद आता है, बाबा की सेवा होती है। तो जिस चीज से बाबा की याद आए, बाबा की सेवा हो, वही राइट। अपना सबका लक्ष्य क्या है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बाबा याद आए, बाबा याद आए, और क्या लक्ष्य है, यही है ना। तो जिस चीज से बाबा याद आए वो राइट। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात जिस चीज से बाबा की याद आए वो मेरे काम की, जिस चीज से बाबा की याद ना आए वो मेरे काम की नहीं। सीधा सा है वैराग्य वृत्ति की विधि। जो कुछ भी करो, आप 56 प्रकार का भोजन बनाओ, खूब खाओ, अगर ब्राह्मण नहीं खाएंगे, भगवान के बच्चे नहीं मौज मनाएंगे तो कौन मौज मनाएगा, भले खाओ, लेकिन देखो क्या बाबा याद आया। अगर बाबा याद आया तो 56 प्रकार का भोजन अहो सौभाग्य, अगर नहीं याद आया तो वो भोजन मिट्टी से भी गया गुजरा है, कोई काम का नहीं। इसलिए बहुत सुंदर वैराग्य वृत्ति की विधि है, इससे बाबा याद आया, सेवा हुई, सेवा होती है, बाबा याद आता है, आहो सौभाग्य। ठीक है, ये समझ में आई बात वैराग्य वृत्ति की। इसलिए आज से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, जितना बेहद की वैराग वृत्ति होगी उतना आपका मन बाबा में लगता जाएगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये पांच विधि है, इन पांचों को अपनाओ तो आपका मन श्रीमत के दायरे में चलता रहेगा। और जितना श्रीमत पर चलाते जाओगे उतना फायदा ही फायदा है, हर पल फायदा है, क्योंकि श्रीमत भगवान दे रहा है और भगवान जानता है हर एक बच्चे का कि किस बात में किसका चलने पर कल्याण है। चाहे प्रेजेंट में अकल्याण हो लेकिन श्रीमत पर चलो तो उस कल्याण में बाबा अकल्याण में कल्याण भर देगा। क्यों हमको अकल्याण महसूस होता है? क्योंकि हम एक कालदर्शी हैं, सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं, इसलिए हमें उसमें उस समय के अनुसार अकल्याण लग रहा है। लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी होने के कारण आपका किसमें कल्याण है वही काम बाबा होने देगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, सत्य घटना है। दिल्ली में एक माता थी, साकार बाबा के समय की बात, बहुत बेगरी पार्ट के समय उसने यज्ञ में बहुत मदद किया। तो जो बेगरी पार्ट के समय यज्ञ में मदद की हो तो बाबा कितना उसके लिए बांधायमान है देने के लिए, क्योंकि गरीबी के समय मदद किया। तो हुआ क्या, एक दिन वो बहन सुबह 4 बजे उठी योग करने के लिए, तो सोचा अभी थोड़ा चाय पी ले, फिर चाय पी के चल के योग करते। किचन में गई चाय बनाने के लिए, उस समय गैस का सिलेंडर चला ही था, जो पाइप था वो रबड़ का था, तो उसने वहां तो गैस बंद कर दिया था लेकिन रेगुलेटर नहीं बंद किया था, तो उसको चूहे कुतर गए थे पाइप को, तो सारी गैस फैल गई थी। तो जैसे उसने कमरा खोल के माचिस जलाई, आग पकड़ लिया और जल के मर गई वही। तो सबने जब गुरुवार को भोग लगाया तब बाबा से पूछा था, बाबा आपने इसकी मदद क्यों नहीं की, क्यों नहीं टच किया कि माचिस नहीं जलाओ, जबकि गैस की बांस आ रही है प्रैक्टिकल में तो नहीं जलाना चाहिए, क्यों नहीं टच किया आपने? तो बाबा ने बताया कि इस बच्ची ने आई बेल के समय बाबा को मदद की है, बाबा इसके बदले में इसको बहुत ऊंच पद देने के लिए बांधायमान है, लेकिन इस बच्ची के सिर पे इतना पाप का बोझा था, इतना पाप का बोझा था, ये कितना भी योग करती सेवा करती वो पाप का खाता उतर नहीं सकता था। अब इसका सब कुछ जल के खत्म हो गया, अब इसका ऊंचा पद फिक्स है। देखो तो बाबा जानता है किस बात में हमारा कल्याण है, प्रेजेंट में अकल्याण है लेकिन है कल्याण। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो, हमारा कल्याण होते होते अंत में हम आत्माएं फुल कल्याणकारी बनकर बाप के साथ साथ बाप के घर चलेंगी और सतयुग में आकर राज करेंगी। अच्छा, ओम शांति।